الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے محترم دوستو بزرگو بھائیو بچوں کی تربیت کے بارے میں علماء فرماتے ہیں دو طریقے ایک تو ماں باپ دا پیرنٹس بچوں کو تربیت دیتے ہیں سکھاتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ اگر ماں باپ نہیں سکھاتے تو بچہ ٹھوکر کھا کے پھر سیکھ جاتا ہے دو طریقے علماء نے لکھے ہیں بچوں کی تربیت کے بہت سارے چیپٹرز ہیں there are so many chapters of the bringing up the children کبھی معاشرتی اعتبار سے اخلاقی اعتبار سے ایمانی اعتبار سے ادبی اعتبار سے بہت سارے چیپٹرز ہیں بچوں کی تربیت اور یہ یاد رکھو قرآن اور حدیث میں بچوں کی تربیت کے بارے میں بہت ساری باتیں بیان فرمائی ہیں ہر ماں باپ کو وہ جاننا ضروری ہے Each and every parents have to learn how to bring our children up. بہت ضروری ہے ماں باپ جو کام کرتے ہیں وہ بچے وہ کام کرتے ہیں یہ بات ہمیشہ یاد رکھو Always children copies parents. Children always copies parents. ماں باپ نماز پڑھتے ہیں تو بچے نماز پڑھیں گے ماں باپ ہی نہیں پڑھتے اتنا کتنا فورس کرو جائے گا واپس آ جائے گا لیکن جو محبت ہونی چاہیے جس محبت سے نماز پڑھنی چاہیے وہ نہیں پڑھے گا ماں باپ قرآن نہیں پڑھتے بچے بھی نہیں پڑھتے ماں باپ ذکر نہیں کرتے بچے بھی نہیں کرتے یہ تو بالکل تمام لوگوں کو پتا ہے بچہ کاپی کرتا ہے ہمارے ایک دوست چیف انجینئر تھے چیف انجینئر کہا جب کبھی اس کے گھر پر فون آتا تھا تو فون اٹھا کر پہلے کہتے تھے ہیلو چیف انجینئر منگلا اسپیکنگ चीफ इंजीनियर मंगला स्पीकिंग, हर वक्त जो भी फोन है ताकि सामने वाले को पता चल जाए कौन बात कर रहा है। सबसे भाई सराज स्पीकिंग कौन है, ऐसे उसने कहा चीफ इंजीनियर मंगला, हेलो चीफ इंजीनियर मंगला स्पीकिंग। एक दिन कह रहे मैं बाथरूम में था और मेरे रूम में रिंग बज रही है, वो 4 साल का मेरा बच्चा है, अभी मैं निकल कर भाई निकला उससे पहले उसने फोन उठाया और कहता हेलो चीफ इंजीनियर मंगला स्पीकिंग। जो बाप बोलता था वही बात कौन बोलता है, बच्चा बोल रहा है 4 साल का, वही बात है। मालूम होता है कि माँ बाप जो काम करते हैं बच्चे वही काम करेंगे, हमेशा याद रखो। इसलिए जरूरी है कि हमें वो काम करने चाहिए जो अल्लाह की निगाह में बहुत महबूब हो, ताकि हमारे बच्चे वो काम करें। आपने शायद सुना होगा द स्टोरी ऑफ कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, काकी मीनिंग रोटी, काकी मीनिंग रोटी, रोटी वाला फारसी का लफ्ज है, काक के माना रोटी है, काकी के माना रोटी वाला है। जब उनके यहां, उनके वालिदैन के यहां जब ये लड़का पैदा हुआ कुतुबुद्दीन जिसका नाम रखा था बच्चे का नाम, जब ये बच्चा पैदा हुआ, अब ये मां बाप डिस्कस कर रहे हैं कि इस बच्चे की तरबियत कैसे करनी है, उसके दिल में कैसे अल्लाह की मोहब्बत पैदा हो जाए, यकीन पैदा हो जाए, यकीन पैदा हो। बच्चों के दिल में अगर यकीन नहीं है तो उसको दीन से मोहब्बत नहीं होती। हाँ उसकी गाड़ी है ऐसी मेरी गाड़ी होनी चाहिए, हाँ उसका बंगला ऐसा मेरा बंगला होना चाहिए, हाँ उसके पास इतने बड़ा जो ऐसा मेरा, उसको बस वही दुनिया ही नजर आती है, दीन नजर नहीं आता उसको, इसलिए उसको यकीन नहीं अल्लाह पर। अरे भाई दीन सीख ले, दीन के सदके अल्लाह दुनिया भी देगा। बड़े बड़े अल्लाह वालों को देखा, हमारे हजरत कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास देवबंद में एक आदमी आया 1,00,000 रुपया लेकर, कहा ये मदरसे के लिए है लेकिन मुझे रसीद चाहिए, रसीद चाहिए। तो हजरत ने कहा रसीद के लिए देता अल्लाह के लिए देता है, जा तेरे पैसे ले जा, नहीं चाहिए 1,00,000 रुपये। फिर उसने बहुत रो रो कर माफी मांगी, नहीं चाहिए मुझे नहीं चाहिए। वो जाते जाते हजरत के शूज में रख के चला गया। हमेशा याद रखो हमारे अकाबिरीन की तवज्जो अल्लाह की तरफ होती थी। ये बच्चा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह जब कभी ये बड़ा हुआ स्कूल जाता था, स्कूल से वापस आया भूखा था, मां से कहा अम्मी भूख लगी है खाना चाहिए, तो कहा भाई हमने भी अल्लाह से मांगा अल्लाह ने खिलाया, तो भी अल्लाह से मांग अल्लाह खिलाएगा, देखा तू भी अल्लाह से मांग, हमने तो अल्लाह से मांगा हमें दे दे हमने खा लिया, तो कैसे मांगू, कहा वुजू कर 2 रकात नमाज पर और यूं अल्लाह से कह कि अल्लाह पाक मैं भूखा हूं मुझे रोटी दे। इनका बिल्कुल सच्चा वाक्य लिखा। और फिर मां चुपके से रोटी बना करके सालन वगैरह बनाकर एक पिंजरे में, एक कपड़े में, एक कमरे में, एक जगह रख देती थी। जब ये नमाज पर लेता दुआ कर लेता तो मां से पूछता अभी खाना का, देख रही कमरे में शायद रखा होगा अल्लाह पाक ने, तो वो जाता वहां हाँ मिल गया बैठ के खाना खा लेता था, आदत हो गई रोजाना अब स्कूल से अल्लाह पाक मुझे खाना दे, वुजू करता 2 रकात नमाज पढ़ता अल्लाह से मांगता था। एक दिन ऐसा हुआ कि वालिदा चली गई कोई वेडिंग में कहीं पर, देर हो गई टाइम का पता नहीं चला, बिल्कुल पता नहीं चला, अल्लाह अकबर अब क्या होगा, आज तो बच्चा आएगा मैं रोटी कैसे कहां रखूंगी, मैंने रोटी रखी नहीं, उसका यकीन टूट जाएगा, वो रो रही है अल्लाह की तरफ मुतवज्जी हो गई, अल्लाह मैं यहां पर हूं और बच्चा घर पर है, उसका यकीन मेरी सालों की महीनों की मेहनत मेरी खत्म हो जाएगी। दुआ करती रही अल्लाह को इंतजाम फरमा दे, अल्लाह को इंतजाम फरमा दे। जल्दी जल्दी आई घर पर, देखा तो बच्चा सोया हुआ है, तो उसने जल्दी रोटी वगैरह बनाकर कमरे में रख दिया।
फिर बच्चे को उठाया, बच्चा स्कूल से आया है, लुक लाइक यू हंग्री, खाना खा लो, अल्लाह से मांगा था। कहा आज तो ऐसी रोटी, मैंने वुजू किया, दो रकात पड़ी और अल्लाह से मांगा कि आज तो मेरी मां भी नहीं, अल्लाह खाना जल्दी दे दे। और मैं कमरे में गया तो वहां ऐसी रोटी कि पहले कभी उस रोटी में मजा नहीं आया जो आज मजा आया। अल्लाह ने कैसा इंतजाम कर दिया। उस जमाने के लोग अपने बच्चों का यकीन बनाते थे, यकीन बनाते जाते भाई रोजी। अल्लाह कुरान में कह रहा है वामुर अहलका बिस्सलाती वस्तबिर अलैहा, अपने बच्चों को बीवी बच्चों को नमाज का हुक्म दो और तुम भी खुद पढ़ो, तुम भी पढ़ो, उनको भी हुक्म दो। क्या होगा, हम तुमसे रोजे नहीं मांगते, नहनु नरजुकु, हम तुम्हारे रोजी के दरवाजे खोल देंगे। और आज का बच्चा डिग्री नहीं करेंगे वहां तक खाना कैसे खाएंगे, फुला क्या करेंगे, फुला क्या करेंगे, और नमाज एक भी नहीं, रोजा एक भी नहीं, इबादत बिल्कुल नहीं, कुरान बिल्कुल नहीं, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे नहीं। ऐसे हजारों मिल जाए उस रोजी में कोई बरकत नहीं जो अल्लाह की नाफरमानी कर इस तरीके से जिंदगी गुजारता है। मैं कुछ सही बातें कह रहा हूं। मां बाप की तरबियत बहुत जरूरी है अपने बच्चों के लिए। याद रखो मां की दुआ जन्नत की हवा, मां की दुआ जन्नत की हवा। उलमा कहते हैं बचपन की बात बचपन में याद रहती है। जो हम अपने बच्चों को बचपन में सिखाएंगे बचपन पर भी वो उसके दिल में पैदा होगा। हमने बचपन में बच्चों की तरबियत नहीं की है, 15 साल तक उसकी तरबियत नहीं की, अब ये फिर ऐसा ही रहेगा, बहुत मुश्किल है। एक आध वहां हमारा सफर हुआ न्यूयॉर्क से लेकर वॉशिंगटन डीसी तक, रास्ते में हर जगह बयान करते करते हम चले 1200 किलोमीटर हम ड्राइविंग किया और हर मदरसे में एक एक बयान, दिन में 2 बयान 3 बयान 4 बयान करते करते, तो वहां पर एक जगह पर बताया कि ये लड़का है, लड़का अपना मुसलमान है लेकिन शराबी है, बहुत ज्यादा शराब पीता है। तो मैंने उसको बुलाया, क्या नाम, व्हाट इज योर नेम? उसने कहा माय नेम इज मो। क्या बताया? मो। मैंने कहा मो? कहा नहीं, मेरा नाम मेरी मां ने मोहम्मद रखा था। क्या रखा था? मोहम्मद रखा था, लेकिन मुझे शराब खाने में लोगों के साथ बैठे मोहम्मद बोलने में शर्म आती है, तो आई चेंज माई नेम मोहम्मद टू मो। वो कितना शराब पीता था, पूरा दिन रात दिन शराब में रहता था, लेकिन बात इस्लाम की करता था। बात कैसी करता था? इस्लाम की बात करता था कि अगरचे मैं शराब पीता हूं लेकिन मेरे दिल में ईमान है, मैंने अपने उस्ताद से पाकिस्तान में ये बातें पढ़ी है और मैंने ये काम किया है और मैंने ये कलमा पढ़ा है, उसके दिल में अब ये कहां बचपन में पढ़ा है वो रूट अभी तक उसके दिल में बाकी है। बहुत जरूरी है तरबियत। एक और जिसके बारे में एक शेख ने लिखा, अजीब लड़का था, उसको उसके बाप ने कहा बेटा बगैर वुजू के कभी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नहीं लेना, बगैर वुजू के। अब बचपन में कह दिया बाप ने, 6 साल की उम्र में उसको कहा था बगैर वुजू के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नहीं लेना, कभी भी अल्लाह के नबी का नाम बगैर वुजू के वो नहीं लेता था, उसका नाम अहमद था, कभी भी नहीं। जब स्कूल जाता था तो एक मर्तबा जलसे में उसको नशीद नात सुपुर्द की गई, तो उसने उस नशीद में क्या कहा, वो नबियों में रहमत लकब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बरलाने वाला, वाला है उसने बदल करके अदब में क्या कहा, वो नबियों के रहमत, उसमें वाला की जगह उसने वाले कहा, वाले अदब के साथ, अदब होता है ना, वाला है वाले है। तो उस वक्त जो बड़े बड़े लोग जलसे में थे उसने कहा इसने जिसने इसको सिखाया है उसने बराबर नहीं सिखाया, ये अल्फाज गलत बोल रहा है, लेकिन उसके दिल में तो अल्लाह के नबी की मोहब्बत थी, وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے, مراد غریبوں کی بر لانے والے والے کہا. اور ایک دن ایسا ہوا اسی اسکول میں اس بچے کے بارے میں, اب یہ کہ کلاس میں کبھی ٹیچر نہیں آتا, جیسے مدرسے میں ہوتا ہے کبھی استاد نہ آئے ٹیچر نہ آئے تو بچے شور کرتے ہیں, آلویز میک نوائز ان دا کلاس. تو پڑوس کی کلاس والے نے ٹیچر نے دوسرے ٹیچر سے کہا آپ فارغ ہیں, آپ ایک ریسس سے پہلے یعنی بریک سے پہلے اور بریک کے بعد دو گھنٹے ہیں خالی ہے, آپ جا کر اس کلاس میں بیٹھے. اور دوسرا استاد آگے کلاس میں بیٹھا, دوسرا ٹیچر, اور اس نے کہا مجھے تمہیں کچھ سکھانا نہیں ہے لیکن ہم کوشچن آنسر کریں گے. کیا کریں گے؟ کوشچن آنسر. میں تمہیں کچھ بات پوچھوں گا آپ, تاکہ ہمارا ٹائم بھی پورا ہو جائے, کلاس جو ہے پہلے کا گھنٹہ اور بریک کے بعد کا, سب کو کچھ نہ کچھ سوال. اب باری آئی اسی احمد کی, اس احمد کو ٹیچر نے پوچھا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا تھا, تجھے یاد ہے؟ کہاں کیا تھا؟ وہ خاموش ہے, جواب نہیں دے رہا, خاموش ہے. پھر اس کو پوچھا تجھے یاد ہے کہ نہیں؟ اس نے کہا مجھے معلوم ہے. کیا نام ہے؟ خاموش بیٹھا ہے. اب جواب نہیں دے گا میں تجھے ماروں گا. اور ٹیچر نے اس کو مارنا شروع کیا, یہاں نہیں ہے وہاں, مارنا شروع کیا. اب وہ مارتے گیا مار, یہ روتا گیا, روتا بہت روتا رہا روتا رہا روتا رہا. اب بریک ٹائم ہو گیا تو سارے بچے اس کو محبت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں, احمد کو اتنا زیادہ اسلامک نالج ہے اس نے کیوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں بتایا, کیوں نہیں بتایا. خیر یہ بریک ہو گئی, باہر گیا اور جا کر کے اپنے منہ ہاتھ دھوئے اور سب وضو کیا, وضو کر کے. اب ایک اور بریک کے بعد ایک گھنٹہ اور تھا, وہی ٹیچر کو آنا تھا. وہ کہہ کر گیا تھا اگر تو نے بریک کے بعد والے گھنٹے میں نام نہیں بتایا تو لکڑی سے ماروں گا. سبحان اللہ, یہ آیا کلاس میں اور ٹیچر بھی آ گیا, کلاس شروع ہو گیا. بچے نے بچے کو پوچھا بتاؤ احمد پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا تھا؟ اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو قریب آ گیا ٹیچر اور اس کو آ کر پوچھا پہلے پہ تو پوچھا تھا تو نے کیوں جواب نہیں دیا؟ اور اس نے روتے ہوئے کہا کہ پہلے میرا وضو نہیں تھا اور میرے باپ نے بچپن سے مجھے کہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بغیر وضو کے نہیں لینا ہے. میں مار کھاتا رہا, مجھے پتا تھا, لیکن اب میں وضو کر کے آیا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اب وضو کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ میرے باپ نے مجھے کہا تھا, اس لیے اس پر عمل کرتا ہوں. اندازہ کرو بچے کو تعلیم دیتے. ہمارے ایک استاد تھے کہہ رہے ایک عالم کے مقام پر مہمان گئے تو اس عالم نے اپنے بیٹے 5 سال کا بیٹا تھا اس کو کہا استاد جی آئے ہو بڑے عالم ہیں اس کی خدمت کرنا ہے. ہمارے بچے آج کل جاتے کسی گھر سے ایسے بات کرتے جیسے پگلا ہے یہ, تیرے باپ نے مجھے ملاقات کے لیے دعوت ہے. کیا دعوت کیا؟ بچوں کو پتہ ہی نہیں مہمان کی خدمت کیا ہے, مہمان کیا ہے, اللہ کے نبی نے کیا کیا بات بیان فرمائی ہے مہمان کے بارے میں. 12-15 سال کے بچے کو پتہ نہیں ہاتھ کیسے دھلانا ہے مہمان کے, اس کو پتہ بھی نہیں. یہ دیکھو گیا باپ نے کہا بیٹے کو بڑے عالم آئے ہیں ان کی خدمت کرنا میں ادھر ادھر جاؤں ان کو, اب یہ ہر وقت حاضر ہے, کھانا تیار لا کر رکھ دیتا ہے دسترخوان پر, باتھ روم میں کپڑے اس کے وہ بات کر کے نکلتے ہیں, ان کے کپڑے آئن کر کے ریڈی ہے اور جوتے کو پالش کرتا ہے سب کچھ. لیکن ایک بات تھی اس بچے کے اندر میں, کام کرتا تھا فوراً, اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کرتا تھا اپنے اسکول کے کام کے لیے, جو مدرسے کام کے لیے چلا جاتا تھا. اب یہ استاد جی کہتے ہیں کب مجھے موقع ملے کہ میں اس کو پوچھوں کہ تیری یہ تربیت کیسے ہوئی, تیری تربیت کیسے ہوئی. تو پھر ایک بار کھانا لے کر آیا دسترخوان پر, میں نے جلدی جانے سے پہلے بیٹا ادھر آؤ, تم سب سے بڑے ہو بھائیوں میں بہنوں میں. تو وہ دیوار کی ایک طرف ہوا اور اس نے کہا سچ بات کہوں اللہ سب سے بڑا ہے, ہاں بھائی بہنوں میں میں بڑا ہوں. کیا کہا اس نے؟ اللہ سب سے بڑا ہے, پہلی بات اس نے یوں کہی. اب اس کے دل میں اللہ کی محبت کتنی ہوگی, بات میری سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے اصول ہے بچوں کی تربیت کے, اصول ہیں, اس اصول کو سیکھنا چاہیے. سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ ہم اپنے بچے کے لیے اور بچی کے لیے رات دن ہر وقت دعائیں کریں ان کی ہدایت کے لیے, सही रास्ते पर चलने के लिए उनकी तरबियत अच्छी हो, इस्लामिक हो, उसके लिए दुआ करें। हाँ, और उस दुआ में इसलिए कि मां बाप की दुआ अपनी औलाद के लिए वलियों की दुआ से ज्यादा है। सही कह रहा हूं, हम अपने औलाद के लिए दुआ करें। अगर मुनासिब हो तो हर नमाज में आखिर में दुआ पढ़ने के बाद अत्तहियात दुरूद इब्राहिम दुआ के बाद सलाम से पहले सुन्नत हो, नफल हो, फर्ज हो, अगर चांस मिल जाए फौरन ये दुआ पढ़ो, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रत आयुन व जअलना लिलमुत्तकीन इमामा। ये दुआ पढ़ो, अल्लाह ने कुरान में दुआ सिखाई है, ये दुआ पढ़े। नमाज के बाद अल्लाह से अपने औलाद के लिए दुआ मांगे। क्यों? मरने के बाद सारे अमल खत्म हो जाते हैं, सदका जारिया और इल्म नाफे, और उसके बाद वलदुल साले हैं। अगर अच्छी औलाद है तो माँ बाप के लिए कब्र में भी और कयामत में भी नजात का जरिया बनेगी। है इल्ला मिन सदकतिन जारिया औ इल्म यंतबियु बिह औ वलदिन सालेह। सबसे बड़ा अदब यही है कि माँ बाप अपनी औलाद की तरबियत अच्छी करे, उसके दिल में कुरान की मोहब्बत डाले, उसके दिल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत डाले, उनकी सुन्नत की मोहब्बत डाले और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान अहले बैत की मोहब्बत डाले। वो जमाना था, तीन अब्दुल्ला नामी साहबी थे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर नमाज के बाद अक्सर नाम लेकर उनके लिए दुआ करते थे, यहां तक के तहज्जुद में भी उनके लिए दुआ की है। तीन अब्दुल्ला थे, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, अब्दुल्ला इब्ने उमर और अब्दुल्ला इब्ने मसूद, तीनों अब्दुल्ला। किताबों में फुकहा कहते हैं या बादिला है, अब्दुल्ला नाम के तीन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं इन बच्चों के लिए ऐसी कबूल हुई कि अब्दुल्ला इब्ने अब्बास मुफस्सिरीन के इमाम बने, अब्दुल्ला इब्ने उमर इमामुल मुहद्दिसीन मुहद्दिसों के इमाम बने और अब्दुल्ला इब्ने मसूद फुकहा के इमाम बने। सबसे पहले अपने बच्चों के लिए दुआ करें, ये दुआ बहुत काम लगती है। हजरत अनस बिन मालिक उम्मे सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है, बेटे को लेकर गई, कहां उम्मे सुलेम, फरमाती है मैं अपने बेटे हजरत अनस को लेकर गई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, 10 साल का बच्चा है, साहबिया है, 10 साल के बच्चे, फरमा अल्लाह के रसूल ये मेरा बेटा आपकी हर वक्त खिदमत करता रहेगा। हजरत अनस फरमाते मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की 10 साल तक, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेटा नहीं है, हमारे बेटे को बताओ कि पैर दबाना बाप का क्या पता ही नहीं उसको, कि मेरे बाप काम से आया है, लाओ मैं उसका पैर दबा दू, लाओ उसके सर में मसाज कर दू। 20 साल का है, कभी उसने बाप के सर पर और बाप के पैर पर हाथ नहीं रखा, हमने सिखाया नहीं अदब, औलाद को सिखाया नहीं, कभी उसने अपनी मां के सामने बैठकर पैर नहीं दबाया, कभी मां के सर पर हाथ नहीं रखा, क्योंकि हमारी माएं भी पढ़ी लिखी नहीं होती है, जो जिस तरह मन में आया बस तरबियत कर दी, कुरान और हदीस के उसूल नहीं सीखे कि बच्चों की तरबियत कैसे करनी है। उस बच्चे को कभी उसने हाथ उठाकर अपने बाप के लिए दुआ नहीं की, अपनी मां के लिए दुआ नहीं की। When the mother gets sick, must tell your child, you are the masoon and innocent, you got no sin. Stand up, read Surah Fatiha, blow on your mother. Read 3 kuls and blow on your mother. उसका तो कोई गुना नहीं है। उन बच्चों के दम करने से फौरन शिफा हो जाती है, कई बार तजुर्बा मुझे कई लोगों ने बतलाया, और मासूम बच्चों की दुआएं फौरन कबूल होती है। अबू हुरैरा जैसे रजी अल्लाह तआला अनु हदीस में सबसे आगे फरमाते हैं कि मुझे जब कोई बहुत बड़ा काम होता था मैं बच्चों के पास जाता था और उनको कहता था मेरे लिए दुआ करो। कई बार का तजुर्बा है हमारा, उनको अल्लाह सिखाओ। इसलिए वो 4 वक्त ऐसे हैं जिस वक्त बच्चे लर्निंग मूड में होते हैं, दे आर 4 टाइम्स द चिल्ड्रन ऑलवेज इन लर्निंग मूड। हम तो हर वक्त नसीहत करते हैं जब ये फ्लाइट और फाइट मूड में होता है। जब ये फाइट और फ्लाइट मूड में होता है नसीहत करता है, वो नसीहत का टाइम नहीं, वो तो उल्टा गुस्सा करेगा। सीखनी चाहिए, सब उसूल है। उलमा फरमाते हैं एक लर्निंग मूड वो है जब आप अपनी गाड़ी में बैठकर बच्चे को स्कूल या मदरसे उतारने के लिए जाओ, उस वक्त दरमियान में उसको लर्निंग मूड में होता है, उसको दो बात, एक बात नसीहत की बतलाओ, वो फौरन उसके दिल में बैठ जाएगी फौरन। दूसरा जब ये सोने का वक्त होता है, नहीं देखा बहुत सारे बच्चे, अम्मी टेल मी सम स्टोरी, तो हमारी अम्मी तो छिपकली की स्टोरी सुनाती है, कभी मंकी की, कभी किसकी, कभी किसकी, ये स्टोरी सुनाती है। सुनाना चाहिए सहाबा की, सहाबियात की, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अहले बैत की स्टोरी सुनाओ। ये वो वक्त है कि अभी ये बात मेरी जो बोलूंगा उसके दिल में चली जाएगी, ये लर्निंग मूड में है, ये दूसरा वक्त है। और तीसरा वक्त है जब बच्चा दस्तरखान पर बैठा हो खाने के लिए, सब बैठकर, अभी तो फैमिली फिश है ही नहीं, बाप ने खा लिया, फिर माँ ने खाया, फिर बच्चा खाएगा, फिर कोई मुलाकात सुलाकात, कुछ नसीहत कुछ नहीं। खाते वक्त दस्तरखान पर, चाहे वीकेंड में हो, सब साथ में बैठ जाएं और कुछ दो चार बात नसीहत की बोल दें, उस वक्त लर्निंग मूड में होता है बच्चा, उस वक्त बात उसके दिल में बैठ जाती है। लेकिन बात दीन कुरान और हदीस की करें, बेटा ऐसा है, देखो बेटा ऐसा है, यू नो। और नंबर चार पर जो है, जब बच्चा बीमार हो उस वक्त लर्निंग मूड में होता है, बीमार बच्चे को जो बात कहेंगे मान लेता है। उलमा ने चार उसूल बयान किए हैं, फरमाया इस वक्त में तुम बात करोगे बच्चे के दिल में बैठ जाएगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, साहबी पीछे बैठे हैं, पीछे बैठे हैं, लर्निंग मूड में कहीं तशरीफ ले जा रहे हैं, जा रहे हैं कहीं पर, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास पीछे बैठे, फरमाया इहफज़िल्लाह यहफ़ज़्क, इहफ़ज़िल्लाह तुजाहक, अल्लाह को हर वक्त दिल में याद रख, अल्लाह तेरे सामने हर वक्त होगा। नसीहत कर अल्लाह के नबी सफर में, यानी जा रहे कहीं, अपने बच्चों की तरबियत बहुत। तो एक होता है बच्चों के लिए दुआ करो, और नरमी के साथ, दंडों के साथ नहीं, हर वक्त दंड नहीं, कभी कभी ठीक, हर वक्त नहीं, नरमी। बंदा जब नरमी इख्तियार करता है तो अल्लाह की रहमत उस पर उतरती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुल्लाह इब्न अब्बास तहज्जुद में, बच्चे आए और किधर खड़े हो गए नमाज में, इधर खड़े हो, इधर, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान पकड़े और इधर राइट साइड में कर दिया, इधर आ जाओ बुखारी शरीफ में, इधर आ जाओ। लेकिन जब नमाज शुरू की अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद, वो पीछे हो गया। हम क्या करते, मेरी बात नहीं सुनता, एक मार देते उसको, मेरी बात नहीं सुनता, लेकिन अल्लाह के, वो पीछे हो गया, आगे क्या, पीछे हो गया आगे। नमाज के बाद पूछा क्यों, फरमा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तो बड़े हैं, मैं तो बच्चा हूं, मैं कैसे आपके साथ खड़ा हो सकता हूं। देखो बच्चे के दिमाग में क्या बात है, मैं तो एक गुलाम हूं, आप तो नबी है, मुनासिब नहीं। इसलिए बच्चों की बात भी कभी कभी सुननी चाहिए, उनके दिमाग में कुछ बातें होती है, मालूम होता है कि एक तो बच्चों के लिए दुआ करो और एक नरमी के साथ, और नंबर तीन पर मौका और महल देखकर बात करो, तब तुम्हारी नसीहत का असर होगा। हर वक्त नहीं, उसका मौका देखो और बच्चे के दिमाग के मुताबिक बात करो। 12 उसूल है, उलमा ने लिखे 12 उसूल, लेकिन वक्त खत्म हो चुका है। उसके दिमाग के, जब तुम छोटा बच्चा, उसका दिमाग छोटा, उसकी इतनी बड़ी बात करोगे उसके दिमाग में उतरती नहीं है, तो क्या फायदा हुआ। इसलिए बच्चों की तरबियत हमारे मरने के बाद भी काम आएगी, कयामत में भी काम आएगा, जन्नत में भी काम आएगा। दुआ करनी चाहिए रब्बे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुआ कर, रब्बे जालनी मुकीम सलाती व मिन ज़ुर्रियती, अल्लाह मुझे भी नमाज कायम करने वाले में से बना और मेरी औलाद को भी बना। हर वक्त दुआ करे, तहज्जुद में दुआ करे, फर्ज नमाजों के बाद दुआ करे, अपनी औलाद के लिए और अपने अपनी औलाद की तरबियत के लिए, हिदायत के लिए, इंशाल्लाह ये काम कर जाएगा कि हमारे दुनिया से। वरना एक आदमी को मैं, भाई ये किसका जनाजा है, का मेरे बाप का नमाज पढ़ाऊंगा, तुम पढ़ लो, मुझे नमाज नहीं आती जनाजे की। उसने बाप के जनाजे की नमाज तक नहीं पढ़ी, इसलिए कि बाप ने तरबियत नहीं की। He never taught him how to perform janaza salah. So he had no that things love to read janaza salah for the father. इसलिए अपने बच्चों को याद कर कराओ दीन की बातें। अल्हम अल्लाह जजाए खैर दे, हमारे मदारी जहां जहां चलते हैं ये अपने बच्चों के, आपके बच्चों के, सबके बच्चों के ईमान की फिक्र करते हैं। अब ये बचपन में जो उनके दिल में बैठ जाता है ना, ये बूढ़े हो जैसे आप लोगों का भी दिल में कितना ईमान, बचपन में जो याद किया है बचपन में भी आपको याद है, वो तहियात याद है, वो दुरूद इब्राहिम याद है, वो नमाज याद है। कब सिखाया था आपको? जब आप बच्चे मकतब में जाते थे। मालूम होता है अपने बच्चों की तरबियत की बहुत फिक्र करो अल्लाह पाक, इसलिए कि अभी हालात बहुत खराब आ रहे हैं, फितने पर फितने आ रहे हैं, हमारे बच्चे हाथ से फिर निकल जाते हैं। आपको पता नहीं मेरे पास कितने केसेस हैं, लड़कियां जवान और लड़के जवान दूसरे मजहब में चले गए, कितने। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक नसीब फरमाए। सुभान अल्लाह। अभी हम भी सुबह काफी काम